नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं। और प्रतिदिन की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं आज की सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि प्रभु हम फिर से एक बार आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए और विशेष करके अपने श्रोता मित्रों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु आप उनकी सहायता करें, उनकी अगुवाई करें, उनसे बोले और बातचीत करें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के दबाव या तनाव में हैं। पिताजी आप उन्हें अपने अनुग्रह प्रदान करें, उन्हें चंगाई प्रदान करें, उन्हें अपनी शांति दें, ताकि आज के इस वचन के द्वारा वे आपको महिमा दे सकें। इस समय को हमें से प्रत्येक के जीवन को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और भजन संहिता 114 से लेकर के 116 के 15 पद तक का अध्ययन करेंगे। मेरे प्रियो, यह एक और हलेल भजन है जो हलेलुया से आरंभ होता है या अंत होता है। भजन संहिता 113 से लेकर के भजन संहिता 118 को मिस्री हलेल भजन कहते हैं। ये सब फसा, पेंतिकोस्त, झोपड़ी और समर्पण पर्व पर गाए जाते थे। स्पष्ट है कि वे फसा के पर्व में गाए जाते थे। कुछ विचारकों के अनुसार 3 भजन आरंभ में और 3 भजन अंत में गाए जाते थे। दूसरी और कुछ लोगों के विचार में से भजन फसा पर्व पर बीच बीच में गाए जाते थे। यह भजन उस अद्भुत परमेश्वर की स्तुति का भजन है जिस परमेश्वर को हम भजन 112 और 113 में देख चुके हैं। भजन 113 में वह सृजनहार है और मुक्तिदाता है और सृष्टि का मुक्तिदाता होगा। अतः हमें परमेश्वर की स्तुति करना है। हलेल भजन परमेश्वर की स्तुति के भजन है। ध्यान दीजिए कि यह भजन मिस्र से इसराइल की मुक्ति से संबंधित भजन है। तो आइए हम भजन संहिता 114 उसके 1 पद को पढ़ें। जब इसराइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया, प्रतिज्ञा के देश में जब अब्राहम गया तब वह अकेला था और परदेशी था। परमेश्वर ने उससे कहा कि उसके लोग मिस्र जाकर एक जाति बन जाएंगे। अतः इसराइल मिस्र देश में एक जाति बना। यहूदी विरोधी वास्तव में मिस्र से उत्पन्न हुआ। बाइबल मिस्र में उनके कष्ट, कठिनाइयां, शोषण और परेशानियों का उल्लेख करती है। उस समय परमेश्वर को उनके साथ बांधी वाचा स्मरण आई, उसने उनकी दुहाई सुनी, उसने इसराइल के वंशजों को देखा और उनका मान रखा। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से छुड़ाया और यह भजन जंगल यात्रा से आरंभ होता है। भजन संहिता 114 के 2 पद में लिखा है, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इसराइल उसके राज्य के लोग हो गए। ध्यान दें, परमेश्वर संपूर्ण इसराइल जाति को अपना मिलाप वाला तंबू बता रहा है। परमेश्वर की आरंभ ही से इच्छा थी कि इसराइल याजकों का एक समुदाय हो, एक गोत्र ही नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें संसार के लिए याजक होना था। मेरे विचार में सहस्त्र वर्षीय राज्य में ऐसा ही होगा जब इसराइल पृथ्वी के मंदिर में सेवा करेगा। भजन संहिता 114 उसके 3 पद में लिखा है, समुद्र देखकर भागा, यर्दन नदी उल्टी बही। इसराइल ने लाल समुन्दर पार किया और उसके बाद यर्दन नदी पार की। इसे हम यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय उसके 13 से 17 पद में पढ़ते हैं। भजन संहिता 114 के 5 पद में लिखा है, हे समुद्र तुझे क्या हुआ कि तू भागा, हे यर्दन तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही। सृजनहार परमेश्वर जिसे हमने भजन 7 उसके 3 पद में सामर्थी देखा है, ने लाल समुन्दर का पानी पीछे हटाया और यर्दन के बहाव को भी रोका था। ये चमत्कार थे और मेरे विचार में इनकी व्याख्या नहीं है। लाल सागर पार करते समय इसराइल वे लहू द्वारा मिस्र से मुक्त कराए गए थे। उन्होंने द्वार पर लहू लगाया था। यर्दन पार करके वे जंगल से प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर गए थे। ये मुक्ति के 2 चरण थे और ये दोनों चरण हमारी मुक्ति के प्रतीक भी हैं। प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमें पाप के दंड से मुक्ति दिलाई थी, जो एक अतीत का काम था। वह आज भी हमें पाप की प्रभुता से मुक्ति दिलाता है, यदि हम उसकी शर्तों को माने, और इसके साथ ही वह हमें पाप की उपस्थिति से भी बचाता है। परंतु यह अभी पूरा नहीं हुआ है। लाल सागर और यर्दन पार करना मुक्ति के 2 चरण हैं। मित्रों, भजन संहिता 114 उसके 7 और 8 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। वह चट्टान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। मित्रों, आप देख सकते हैं कि फसह के पर्व में इस अनुपम भजन का पाठ कैसा उपयुक्त होता होगा। यह भजन परमेश्वर की प्रजा के पक्ष में उसके सामर्थ्य और उसकी करुणा का स्मरण करना है। यहाँ पर भजन संहिता 114 समाप्त होता है। अब हम भजन 115 से देखेंगे, जिसका विषय है परमेश्वर की महिमा, क्योंकि वह मूर्तियों का विपरीत है। यह भजन प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम फसह मनाते समय और प्रभु भोज की स्थापन के समय गाया था। यह जानना अति रोमांचकारी है कि प्रभु यीशु स्वयं इस भजन को वरन अन्य हलेल भजन को गाते थे। हमें इसके लेखक की जानकारी नहीं दी गई है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि बंधुआई से लौटने का उत्सव मनाने वाले इसराइलियों में से किसी ने यह भजन लिखा था। इसके 3 विभाजन किए गए हैं। पहला मंडली गान पद 1 से 8, दूसरा लेवी पद 9 से 11, तीसरा मंडली पद 12 से 18। आप शायद मुझसे सहमत न हो, परंतु मेरी समझ में इसके ये 3 विभाजन हैं। आइए हम भजन संहिता 115 उसके 1 पद को पढ़ें। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा, अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। इसराइल अपनी दीनहीन दशा में है, परंतु उसका विश्वास परमेश्वर में है। वे पहले तो परमेश्वर से दूर थे, परंतु यहाँ वे महाक्लेश में हैं और परमेश्वर के सहस्त्र वर्षीय राज्य की ओर अग्रसर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 पर्वों में यह भजन गाना उन पर अवश्य ही प्रभाव डालता है। अन्य जातियां उनका ठड्ढा अर्थात मजाक करके कहती थी, उनका परमेश्वर कहाँ है। आइए हम भजन 115 के 2 में पढ़ें। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ है। दूसरे शब्दों में, तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है, तो वह तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं करता। इसके उत्तर में हम आगे पढ़ेंगे भजन 115 के 3 पद में, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। जी हाँ, परमेश्वर ने उनके पापों के कारण उन्हें कष्ट भोगने दिए, क्योंकि यह उसकी इच्छा थी, उसकी योजना में था, उसका उद्देश्य था। अब इसराइल अपनी विषम परिस्थितियों को परमेश्वर की ओर से स्वीकार करता है। अब मूर्ति पूजा के लिए उसकी क्षमा याचना सुने। भजन संहिता 115 उसके 4 पद में लिखा है, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की ही तो हैं, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई हैं। मेरे प्रियो, इसराइल का परमेश्वर स्वर्ग में है, जो सृजनहार है और एक आत्मा है, जिसकी स्थापना मनुष्य ने नहीं की, जबकि अन्य जातियों की देवी देवता मनुष्य की हस्तकला है जो सोने चांदी और काठ से बनाए गए हैं। भजन संहिता 115 उसके 5 और 6 पद में लिखा है, उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती। जी हाँ, अन्य जातियों ने अपने देवताओं के सब अंग बनाए परंतु वे उनका उपयोग नहीं कर सकते। भजन संहिता 115 के 7 पद में लिखा है, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती और अपने कंठ से कुछ भी शब्द निकाल नहीं सकती। ध्यान दें, दूसरे शब्दों में अन्य जातियों के देवी देवता उनकी सहायता नहीं कर सकते। यशायाह ने मूर्ति पूजा का सर्वोत्तम उपहास किया है जो धर्म शास्त्र में व्यक्त है। वह मूर्ति पूजकों से अर्थात प्रतिमा पूजकों से कहता है, यशायाह की पुस्तक 44 अध्याय उसके 14 से 17 पद में लिखा है, वह देवदार को काटता या वन के वृक्षों में से जाति जाति के वांज वृक्ष चुनकर देखभाल करता है। वह देवदार का एक वृक्ष लगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है, तब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है। वह उसमें से कुछ सुलगाकर तापता है, वह उसको जलाकर रोटी बनाता है, उसी से वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वह मूरत खुदवाकर उसके सामने प्रणाम करता है, उसका एक भाग तो वह आग में जलाता है और दूसरे भाग से मांस पकाकर खाता है। वह मांस भूनकर तृप्त होता फिर ताप कर कहता है, आह मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी है। और उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूरत खोदकर बनाता है, तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता है और उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले क्योंकि तू मेरा देवता है। मेरे प्रियो, मनुष्य को अपनी मूर्ति उठाकर चलना पड़ता है, मनुष्य अपने परमेश्वर को सहारा दे रहा है, परंतु यहोवा कहता है, मैं परमेश्वर हूं, मैं तुझे उठाकर चलूंगा। क्या आपका परमेश्वर आपको उठाकर चलता है या आप उसे उठाकर के चलते हैं? अनेक मनुष्य के लिए धर्म एक बोझ है जिसे उन्हें कंधों पर उठाना है। क्या परमेश्वर आपको सहारा दे रहा है या आपको उसे सहारा देने की आवश्यकता पड़ रही है? मेरे प्रियो, आपको अपने परमेश्वर को सहारा देना पड़ रहा है। यह आधुनिक मूर्ति पूजा है। वैरी ने परमेश्वर की प्रजा का ठट्ठा अर्थात मजाक किया और लेवी उनको उत्तर देते हैं। इसे हम भजन 115 उसके 9 से 11 पद में पढ़ते हैं, हे इसराइल यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवाइयों यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। मुझसे पूछा जाता है, नास्तिकवाद का उत्तर क्या है, भौतिकवाद का उत्तर क्या है, चारों ओर व्याप्त अनैतिकता का उत्तर क्या है? आप मनोवैज्ञानिक के तख्त पर लेटें, यह उत्तर नहीं है। उत्तर तो इतना अधिक सरल है कि मनुष्य उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाता है। परमेश्वर में भरोसा रखें, यही एकमात्र समाधान है। नास्तिकवाद, भौतिकवाद, अनैतिकता के मध्य परमेश्वर पर भरोसा रखें, उस पर आश्रित हों, उसके निकट आ जाएं, उस पर स्वयं को छोड़ दें। ओह, यह एक अद्भुत भजन है। मैं आपको परमेश्वर के अति निकट लाऊंगा। पद 12 से आगे मंडली का प्रतिउत्तर है। यह एक प्रकार से उत्तरवादी भजन है। भजन संहिता 115 उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इसराइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको भी आशीष देगा, वह आपके मित्रों, आपके परिवार, आपकी कलीसिया को आशीष देगा। यदि आप उसकी ओर फिरे तब वह आपके समुदाय को भी आशीष देना चाहता है और देगा। अति अद्भुत बात तो यह है कि वह आपका ध्यान रखता है। परमेश्वर न तो आपको भूला है और न कभी मुझे भूला है। मैं तो आपका नाम और पता भी नहीं जानता, परंतु वह जानता है। हवाई यात्रा में नीचे जब आप देखते हैं तो उन हजारों अनजान मनुष्यों को आप देख करके सोच सकते हैं कि वे कौन हैं, क्या उन्हें कोई जानता है। समाज अति अवैतिक है। आपके कार्यस्थल में, आपके स्कूल में, आपकी सरकार के लिए आप मात्र एक जनसंख्या है, परंतु परमेश्वर के लिए परिचित जन है। वह आपका अंक ही नहीं, आपका नाम भी जानता है और आपका पूरा विवरण जानता है। उसमें आप विश्वास करें। भजन संहिता 115 के 13 पद में लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। यह एक वर्गीकृत सैद्धांतिक कथन है, या तो आप इसे माने या ना माने। यदि आप इसे मानेंगे तो आपके जीवन में यह एक अद्भुत अंतर उत्पन्न करेगा। भजन संहिता 115 उसके 14 और 15 पद में लिखा है, यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। जी हाँ, वह सृजनहार है। 115 भजन के 16 पद में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर की इच्छा यह नहीं कि मनुष्य चांद पर रहे। यदि वह चांद की यात्रा करता है तो वह परमेश्वर की संपत्ति से छेड़छाड़ करता है। उसने मनुष्य को पृथ्वी पर अधिकार दिया है या अधिकारी ठहराया है। भजन संहिता 115 के 17 पद में लिखा हुआ है, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यह की स्तुति नहीं कर सकते। हम इस पृथ्वी पर हैं तो हमें परमेश्वर की स्तुति करना है। उसका मूल्य यही है। भजन संहिता 115 उसके 18 पद में लिखा है, जो आखिरी पद है, परंतु हम लोग याह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। याह की स्तुति करो। मेरे प्रियो, वे जो उसे जानते हैं अब से हमेशा तक उसकी स्तुति करेंगे। याह की स्तुति करो। हालेलुया। आपको इसमें आपत्ति नहीं है, है क्या? आप चाहे किसी भी कलीसिया के कैसे भी प्रतिष्ठित जन क्यों ना हो, आपको उसकी स्तुति करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे हमें कष्ट नहीं होगा। हम तनावग्रस्त होते हैं। सबसे अच्छी औषधि है अपना मन परमेश्वर की ओर खोलकर उसकी स्तुति करें, उससे बातें करें, जो आपके लिए अति लाभदायक होगा। मित्रों, यहाँ पर भजन 115 समाप्त होता है। अब हम भजन संहिता 116 में देखते हैं, जिसका विषय है प्रेम का गीत, क्योंकि परमेश्वर ने मृत्यु को निगलकर जय पाई है। यह धर्मशास्त्र के महान भजनों में से एक है। कुछ टीकाकार इसे महानता में भजन संहिता 23 के बाद रखते हैं। यह धन्यवाद का भजन है। मनुष्य निराशा में परमेश्वर को पुकारता है और परमेश्वर अपनी दया में होकर सुनता है। यह प्रेम का गीत है, हलेल भजन है। यह एक सरल भजन है जो मसीह की मृत्यु के समय के कष्टों का वर्णन करता है। जिस रात वह पकड़वाया गया कि अगले दिन क्रूस पर मारा जाए, उसने यह भजन गाया था। काश मैं उसे यह भजन गाते सुनता। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय के 2 पद में लिखा है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। और उसी ने अंतिम रात बड़े आनंद के साथ यह भजन गाया। मेरे मित्रों, यह भजन भविष्य की चर्चा करता है, महाक्लेश से शेष इसराइली भक्तों की मुक्ति की चर्चा। परंतु इसमें आज के आधुनिक मनुष्य के लिए भी संदेश है, आज के वर्तमान विश्वासी के लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम यह जानें। यह वचन निराश और परेशान विश्वासियों के लिए अनुग्रह से पूर्ण है। यह भजन आपकी चिंता का निवारण करेगा और आपकी शंकाओं को दूर करेगा। यीशु जिस रात पकड़वाया गया, उसने यह भजन गाया। पद 1-5 में परमेश्वर सुनता है, पद 6-13 में परमेश्वर सहायता करता है, और तब पद 14-19 में परमेश्वर पवित्र है। तो आइए हम देखें परमेश्वर सुनता है। भजन संहिता 116 उसके एक पद में, मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। जी हाँ, मैं प्रेम रखता हूँ। स्मरण रखें कि यह एक प्रेम गीत है। क्या आपने परमेश्वर से कभी कहा कि आप उससे प्रेम करते हैं? मेरे विचार में मसीही जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग यही है। क्या आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं? क्या आपके संबंध उसके साथ घनिष्ठ हैं? क्या आप उससे बात करते हैं? क्या आपने आज उससे बात की है? क्या वह आपके लिए जीवनदायक एवं सच्चा परमेश्वर है? संसार नकली से अब उब गया है। क्या आप भी नकली से उब गए हैं? पहला योहन्ना के पत्र 4 अध्याय उसके 19 पद में, विश्वासी का अंगीकार है कि हम उससे इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। पत्रस कहता है, पहला पत्रस 1 अध्याय के 8 पद में, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। यूहन्ना के सुसमाचार 21 अध्याय उसके 15 से 17 पद में प्रभु यीशु ने पत्रस से पूछा था कि क्या वह उससे प्रेम करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय के 5 पद में लिखा है, वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। फिलदिल्फिया की कलीसिया से प्रभु ने कहा, देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। फिलादिल्फिया की कलीसिया आज की बाइबल विश्वासी कलीसिया का प्रतीक है। अब इन सब का मुख्य कारण क्या है? इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। क्या हमें उच्चारित प्रार्थना करना है? यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, इसका अर्थ है उच्चारित शब्दों को सुना है। मैं कई बार गाड़ी चलाते समय भी परमेश्वर के साथ बातचीत करना पसंद करता हूँ। शायद आप भी ऐसा कर सकते हैं। भजन संहिता 116 के 3 पद में लिखा है, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। मेरे प्रियो, यह क्रूस पर हमारे प्रभु यीशु की निराशा है। वह जानता था कि हम कैसे कैसे कष्ट उठाएंगे। उसने मृत्यु से पूर्व की रात यह गाया था। सच तो यह है कि हमारा मृत्यु दंड उसका मृत्यु दंड बन गया था। उसे मरने की आवश्यकता नहीं थी। उसने अपनी इच्छा से अपना जीवन आपके और मेरे लिए बलि चढ़ाया। उसकी जान लेने वाला कोई नहीं था, परंतु उसने स्वयं दिया। भजन संहिता 116 के 4 पद में लिखा है, तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। उसने परमेश्वर को पुकारा, मेरे प्राण को बचा ले, उसकी प्रार्थना सुनी गई। भजन संहिता 116 उसके 5 में लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। परमेश्वर दयावंत हो तो और क्या भली बात है। जी हाँ, परमेश्वर दयावंत तो है, परंतु वह धर्मी भी है। वह जैसे चाहे वैसे क्षमा नहीं करता है। उसे न्यायोचित होना है। इस जगत का नैतिक शासक परमेश्वर है। उसे न्याय में उचित और पवित्र तथा धर्मी होना है, परंतु वह दया प्रकट करना चाहता है। अतः उसके पास एकमात्र मार्ग था कि मनुष्य के पाप का दंड चुकाए। अब वह कह सकता है, आओ मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं परमेश्वर सहायता करता है। भजन संहिता 116 उसके 6 और 7 पद में लिखा है, यहोवा भोलों की रक्षा करता है, जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। जी हाँ, ध्यान दीजिए, कठिन तनावग्रस्त निराशजनक दिन के बाद हमें शांत स्थान की आवश्यकता होती है कि वहां हम अपने पापों का अंगीकार करें, वचन पढ़ें और परमेश्वर से बात करें। यह आत्मा का पवित्र स्थान है। ओह, हम सबको इसकी कैसी आवश्यकता है। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ। इससे हमें परमेश्वर के लिए संसार का सामना करने की क्षमता प्राप्त होगी। भजन संहिता 116 के 13 पद में लिखा है, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। यह फसह का कटोरा था जो उस समय बढ़ाया जाता था। वे कटोरे से पीकर आगे बढ़ाते हुए गाते थे, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर। जी हाँ, वे जानते थे कि उद्धार का कटोरा उसकी ओर संकेत करता था जो आने वाला था। मैं सोचता हूँ कि क्या यही वह कटोरा है जिसके विषय यीशु ने कहा था, इसे लो और पियो, मैं इसे तब तक नहीं पीऊंगा जब तक कि राज्य में नए सिरे से न पीऊं, क्योंकि मुझे कल एक दूसरा कटोरा पीना है। इसके पश्चात गतसमनी में उसने प्रार्थना की कि उससे वह कटोरा टल जाए, क्योंकि उसका पवित्र स्वभाव पाप होने को तैयार नहीं था। तथापि उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय के 2 पद में हम इसे पढ़ते हैं, और अगले दिन आनंद के साथ क्रूस की मृत्यु स्वीकार की। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं, परमेश्वर पवित्र है। यह भजन का अंतिम भाग है, जैसा कि मैंने 3 भाग आपके सामने रखे थे उसमें से, जो प्रकट करता है कि परमेश्वर पवित्र है। उसकी पवित्रता महत्वपूर्ण है, यही कारण था कि उसे हमारे पापों के लिए मरना पड़ा। भजन संहिता 116 उसके 15 पद में लिखा है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। प्रभु यीशु की मृत्यु परमेश्वर के लिए अत्यधिक मूल्यवान थी। इसी प्रकार महाक्लेश में शहीद होने वालों की मृत्यु परमेश्वर के लिए मूल्यवान होगी। अनेक विश्वासी शहीद होंगे, हम इसे वर्तमान में प्रासंगिक बना सकते हैं। परमेश्वर की संतान की मृत्यु उसके लिए अत्यधिक मूल्यवान होती है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, इस बात को स्मरण करें कि जब आप उसकी निकटता में बने रहते हैं, यदि आप किसी प्रियजन को खोते हैं, तो निश्चय जाने कि परमेश्वर की दृष्टि में वह विश्वासी भाई बहन, माता पिता या बच्चे बहुत मूल्यवान है। मेरे प्रिय मित्र, आज हम इस बात को जान गए हैं कि हमारा परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है। इतना ही नहीं, वह पवित्र भी है। वह चाहता है कि हम उसकी स्तुति और प्रशंसा करें। तो आइए आज हम इस वचन के प्रकाशन में अपने आप को डालें और प्रभु की निकटता में आएं और उसकी आराधना और स्तुति करें। प्रियो, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। प्रभु आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे एवं आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मसीहा के पाँव तुम्हें तो हो, मसीहा के पाँव तुम्हें तो हो, मसीहा के पाँव तुम्हें तो हो, मसीहा के पाँव तुम्हें तो हो। कहाँ जा रहे हो जरा जान लो, मसीहा के पाँव तुम्हें तो हो, मसीहा के पाँव तुम्हें तो हो, मसीहा के हाथ तुम्ही तो हो, मसीहा के हाथ तुम्ही तो हो,
मसीहा के